अध्ययन लेख 41। इस लेख का अध्ययन 9 से 15 दिसंबर के दौरान किया जाएगा। विषय, महासंकट के दौरान वफादार रहिए। ये लेख भजन 31 के 23 पर आधारित है, जहां लिखा है, यहोवा के सभी वफादार लोगों, उससे प्यार करो। यहोवा विश्वास योग्य लोगों की हिफाजत करता है। गीत 129, हम धीरज धरेंगे। लेख की एक झलक, बहुत जल्द धरती पर रहने वाले सभी इंसानों पर महासंकट आने वाला है। उस वक्त हमारा क्या होगा? यहोवा हमसे क्या उम्मीद करता है? हमें अपने अंदर कौन से गुण बढ़ाते रहना है ताकि हम महासंकट के दौरान यहोवा के वफादार रह सके? इस लेख में इन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। पैराग्राफ 1 और 2। सवाल क, बहुत जल्द दुनिया के नेता क्या ऐलान करेंगे? सवाल ख, हमें किन जरूरी सवालों के जवाब मिलेंगे? कल्पना कीजिए कि दुनिया के नेताओं ने अभी अभी शांति और सुरक्षा का ऐलान किया है। वो पूरे दावे के साथ कहते हैं कि अब से हर कोई सुरक्षित होगा और सुकून की जिंदगी जिएगा। वो लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने दुनिया की सारी समस्याओं का हल कर दिया है, लेकिन इसके बाद जो घटना घटेगी उस पर उनका कोई बस नहीं चलेगा। वो इसलिए कि बाइबल बताती है, उसी वक्त अचानक उन पर विनाश आ पड़ेगा और वो किसी भी हाल में नहीं बच पाएंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 5:3। लेकिन सवाल है कि महासंकट के दौरान क्या होगा? उस समय यहोवा हमसे क्या करने की उम्मीद रखता है? हम अभी से क्या तैयारी कर सकते हैं ताकि महासंकट के दौरान यहोवा के वफादार रह सके? इस लेख में हमें इन जरूरी सवालों के जवाब मिलेंगे। महासंकट के दौरान क्या होगा? पैराग्राफ 3। सवाल, प्रकाशित वाक्य 17:5 और 15-18 के मुताबिक परमेश्वर किस तरह महानगरी बेबीलोन को तबाह करेगा? प्रकाशित वाक्य 17:5 में लिखा है, उस वेश्या के माथे पर एक रहस्यमय नाम लिखा था, महानगरी बेबीलोन, वेश्याओं की मां और पृथ्वी की घिनौनी चीजों को जन्म देने वाली। आयत 15-18 में लिखा है, उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, पानी की जिन धाराओं पर तूने उस वेश्या को बैठे देखा, उनका मतलब है लोग और भीड़ और राष्ट्र और भाषाएं, और जो 10 सींग तूने देखे, वो और वो जंगली जानवर उस वेश्या से नफरत करेंगे और उसे तबाह और नंगा कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में पूरी तरह जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनके दिल में ये बात डाली है कि वो उसकी सोच पूरी करें, ताकि वो जिस बात पर एक राय रखते हैं उसे पूरा करने के लिए तब तक जंगली जानवर को अपना राज दें जब तक कि परमेश्वर का कहा वचन पूरा ना हो जाए। और जिस औरत को तूने देखा, उसका मतलब वो महानगरी है जिसका राज पृथ्वी के राजाओं पर है। महानगरी बेबीलोन को तबाह किया जाएगा। जैसे हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा, दुनिया के नेताओं का इस घटना पर कोई बस नहीं चलेगा। वो इसलिए कि परमेश्वर उनके दिल में ये बात डालेगा कि वो उसकी सोच पूरी करें। परमेश्वर की सोच क्या है? यही कि ईसाई जगत और बाकी सभी झूठे धर्मों का नाश किया जाए। फुटनोट, इसका क्या मतलब है? ईसाई जगत उन धर्मों को कहा जाता है जो मसीह की शिक्षाओं पर चलने का दावा तो करते हैं, मगर जो लोगों को यहोवा की उपासना करने और उसके स्तरों के मुताबिक चलने का बढ़ावा नहीं देते। फुटनोट समाप्त। परमेश्वर ये किस तरह करेगा? वो सुर्ख लाल रंग के एक जंगली जानवर के 10 सींगों के मन में अपनी बात डालेगा। 10 सींग उन सभी राजनैतिक शक्तियों को दर्शाते हैं जो उस जंगली जानवर यानी संयुक्त राष्ट्र का साथ देती हैं। प्रकाशित वाक्य 17:3। जब राजनैतिक शक्तियां झूठे धर्मों पर हमला करेंगी, उसी घड़ी महासंकट शुरू हो जाएगा। ये घटना पूरी दुनिया को हिला कर रख देगी। पैराग्राफ 4। सवाल का, दुनिया के नेता झूठे धर्मों पर हमला करने की शायद क्या वजह दें? सवाल ख, इन धर्मों के मानने वाले शायद क्या करें? हम नहीं जानते कि दुनिया के नेता महानगरी बेबीलोन पर हमला करने की क्या वजह देंगे। हो सकता है वो कहें कि धर्मों की वजह से दुनिया में शांति नहीं थी, या धर्मों ने हमेशा से राजनीति में दखल दिया है। या फिर वो शायद कहें कि इन धार्मिक संगठनों ने बेशुमार दौलत और संपत्ति बटोर ली है, इस वजह से उनके खिलाफ कदम उठाना जरूरी है। ऐसा मालूम होता है कि दुनिया के नेता झूठे धर्म के मानने वालों का नहीं बल्कि धर्मों का नाश करेंगे। इसके बाद उन धर्मों के मानने वालों को एहसास हो जाएगा कि धार्मिक अगुवे उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और वो उन धर्मों से नाता नहीं रखेंगे। पैराग्राफ 5। सवाल, यहोवा ने महासंकट के बारे में क्या वादा किया है और क्यों? बाइबल ये नहीं बताती कि महानगरी बेबीलोन के नाश होने में ठीक कितना वक्त लगेगा, लेकिन इतना जरूर बताती है कि ये बड़ी तेजी से होगा। यहोवा ने वादा किया है कि महासंकट के दिन घटाए जाएंगे ताकि उसके चुने हुओं का नाश न हो और सच्चा धर्म मिट न जाए। मरकुस 13:19-20। लेकिन जब महासंकट शुरू होगा, उस वक्त से लेकर हर्मगिदोन की लड़ाई तक, यहोवा हमसे क्या करने की उम्मीद रखता है? यहोवा की शुद्ध उपासना करते रहिए। पैराग्राफ 6। सवाल, महानगरी बेबीलोन से अलग होने के लिए हमें और क्या करना होगा? पिछले लेख में हमने देखा था यहोवा चाहता है कि उसके सेवक महानगरी बेबीलोन से अलग हो जाएं, लेकिन इसके लिए झूठे धर्मों से नाता तोड़ लेना काफी नहीं है। हमें यह भी ठान लेना चाहिए कि हम हर हाल में यहोवा की शुद्ध उपासना करेंगे। ऐसा करने के दो तरीकों पर गौर कीजिए। पैराग्राफ 7। सवाल का, हम किस तरह यहोवा के ऊंचे नैतिक स्तरों पर चलते हैं? सवाल ख, इब्रानियों 10:24-25 में इकट्ठा होने की क्या वजह बताई गई है और ऐसा करना आज और भी ज्यादा जरूरी क्यों है? पहला तरीका है हर हाल में यहोवा के ऊंचे नैतिक स्तरों पर चलना। चाल चलन के मामले में हम दुनिया के स्तर नहीं अपनाते। उदाहरण के लिए, हम हर किस्म के नाजायज यौन संबंध को गलत मानते हैं, फिर चाहे वो दो समान लिंग के व्यक्तियों का आपस में शादी करना हो या किसी और तरीके से समलैंगिक जीवन बिताना। दूसरा है मसीही भाई बहनों के साथ यहोवा की उपासना करते रहना। हम सभाओं में इकट्ठा होना नहीं छोड़ते, फिर चाहे हम राजघर में मिलते हों या हालात ऐसे हो जाएं कि हमें भाई बहनों के घरों पर या फिर चोरी छिपे सभाओं के लिए मिलना हो। दरअसल, जैसे जैसे हम यहोवा का दिन नजदीक आता देख रहे हैं, सभाओं में इकट्ठा होना और भी ज्यादा जरूरी है। इब्रानियों 10:24-25 में लिखा है, और आओ हम एक दूसरे में गहरी दिलचस्पी लें, ताकि एक दूसरे को प्यार और भले काम करने का बढ़ावा दे सकें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें जैसा कुछ लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे की हिम्मत बंधाएं। और जैसे जैसे तुम उस दिन को नजदीक आता देखो, ये और भी ज्यादा किया करो। पैराग्राफ 7 से संबंधित तस्वीर के बारे में, महासंकट के दौरान साक्षियों का एक छोटा सा समूह हिम्मत से काम लेता है और सभा के लिए जंगल में इकट्ठा होता है। चित्र शीर्षक, मुश्किल हालात में भी एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें। पैराग्राफ 8। सवाल, भविष्य में हमारे संदेश में क्या फेरबदल होगा? अब तक हम परमेश्वर के राज के बारे में खुशखबरी सुनाकर लोगों को चेला बनाते आए हैं, लेकिन महासंकट के दौरान इस संदेश में फेरबदल होगा। उस वक्त हमें शायद लोगों को कड़ा संदेश सुनाना हो, जिसकी तुलना बाइबल में बड़े बड़े ओलों से की गई है। हो सकता है हम ये संदेश सुनाए कि शैतान की दुनिया का बहुत जल्द अंत होने वाला है, लेकिन हम ठीक क्या संदेश सुनाएंगे और कैसे सुनाएंगे? क्या हम पिछले 100 सालों से जो तरीके आजमाते आए हैं वही तरीके अपनाएंगे या दूसरे तरीके आजमाएंगे? ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। हम चाहे जो भी तरीका अपनाएं, हम निडर होकर यहोवा के न्याय का संदेश सुनाएंगे जो हमारे लिए किसी सम्मान से कम नहीं। पैराग्राफ 9। सवाल, हमारा संदेश सुनकर राष्ट्र क्या करेंगे, लेकिन हमें किस बात का यकीन है? हमारा संदेश सुनकर राष्ट्र जरूर भड़क उठेंगे और हमारा काम बंद करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज जिस तरह हम प्रचार में यहोवा पर निर्भर रहते हैं, उस वक्त भी हमें यहोवा पर निर्भर रहना होगा। हमें पक्का यकीन है कि परमेश्वर हमें ताकत से भर देगा ताकि हम उसकी मर्जी पूरी कर सकें। परमेश्वर के लोगों पर होने वाले हमले के लिए तैयार रहिए। पैराग्राफ 10। सवाल, जैसा कि लूका 21 के 25 से 28 में बताया गया है, महासंकट के दौरान ज्यादातर लोग कैसा महसूस करेंगे? लूका 21 के 25 से 28 में लिखा है, यही नहीं, सूरज, चांद और तारों में निशानियां दिखाई देंगी और धरती के राष्ट्र बड़ी मुसीबत में होंगे, क्योंकि समुन्दर के गरजने और उसकी बड़ी हलचल की वजह से उन्हें बचने का कोई रास्ता नहीं सूझेगा। धरती पर और क्या क्या होगा, इस चिंता और डर के मारे लोगों के जी में जी न रहेगा, इसलिए कि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। इसके बाद वो इंसान के बेटे को एक बादल में शक्ति और बड़ी महिमा के साथ आता देखेंगे। लेकिन जब ये बातें होने लगें तो तुम सिर उठाकर सीधे खड़े हो जाना, क्योंकि तुम्हारे छुटकारे का वक्त पास आ रहा होगा। लोग अब तक जिन जिन चीजों पर भरोसा करते आए हैं, महासंकट के दौरान वो सब मिट जाएंगी। ये देखकर उन्हें बड़ा झटका लगेगा। वो एकदम लाचार महसूस करेंगे, उन्हें चिंताएं आ घेरेंगी, यहां तक कि उन्हें अपनी जान गंवाने का भी डर रहेगा। महासंकट के दौरान यहोवा के लोगों के लिए भी जिंदगी मुश्किल भरी होगी। हम दुनिया के नहीं हैं, इसलिए हमें शायद कुछ तकलीफों और परेशानियों से गुजरना पड़े। हो सकता है हमारी हर दिन की जरूरतें भी पूरी ना हो। पैराग्राफ 11। सवाल का, राष्ट्रों का पूरा ध्यान यहोवा के साक्षियों पर क्यों होगा? सवाल ख, हमें महासंकट से डरने की जरूरत क्यों नहीं है? महासंकट के दौरान जिन लोगों का धर्म मिट जाएगा, वो ये देखकर गुस्से से भर जाएंगे कि यहोवा के साक्षी अब भी परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। वो अपनी ये नाराजगी शायद सोशल मीडिया वगैरह पर खुलकर जाहिर करेंगे। सभी राष्ट्र और उनका राजा शैतान हमसे नफरत करेंगे, क्योंकि सिर्फ हमारा धर्म नाश नहीं हुआ होगा, जबकि इन राष्ट्रों का मकसद था कि धरती से सभी धर्मों का नामोनिशान मिट जाए। इस वजह से उनका पूरा ध्यान हम पर होगा। तब राष्ट्र मागोग देश के गोग की भूमिका निभाएंगे। फुटनोट, इसका क्या मतलब है? मागोग देश का गोग या गोग राष्ट्रों का गठबंधन है। महासंकट के दौरान ये राष्ट्र एकजुट होकर शुद्ध उपासना करने वालों पर हमला करेंगे। फुटनोट समाप्त। वो एकजुट होकर यहोवा के लोगों पर हमला करेंगे ताकि उन्हें पूरी तरह मिटा दें। हो सकता है इस हमले के बारे में सोचकर हम थोड़ा घबरा जाएं, खासकर जब हमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन हम एक बात का भरोसा रख सकते हैं, वो ये कि यहोवा हमारी हिफाजत के लिए जरूरी निर्देश देगा, इसलिए हमें महासंकट से डरने की जरूरत नहीं होगी। हम सिर उठाकर सीधे खड़े होंगे, क्योंकि तब हमें एहसास होगा कि हमारे छुटकारे का वक्त पास आ रहा है। पैराग्राफ 12। सवाल, विश्वासयोग्य और बुद्धिमान दास हमें आने वाले समय के लिए कैसे तैयार कर रहा है? विश्वासयोग्य और बुद्धिमान दास हमें अभी से तैयार कर रहा है ताकि हम महासंकट के दौरान यहोवा के वफादार रह सकें। मत्ती 24:45। हमें तैयार करने का एक तरीका है हमारे अधिवेशन। सन 2016 से 2018 के हमारे अधिवेशनों पर ध्यान दीजिए। इनमें बताया गया था कि यहोवा के दिन का सामना करने के लिए हमें किन गुणों की जरूरत है और उन्हें बढ़ाते रहने का प्रोत्साहन दिया गया। आइए थोड़ी देर के लिए उन गुणों पर चर्चा करें। वफादारी, धीरज और हिम्मत बढ़ाते रहिए। पैराग्राफ 13। सवाल, यहोवा के वफादार रहने के लिए हमें क्या करना होगा और ये अभी से करना क्यों जरूरी है? वफादारी। सन 2016 के अधिवेशन का विषय था यहोवा के वफादार बने रहिए। इस कार्यक्रम से हमने सीखा कि अगर यहोवा के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होगा तो हम उसके वफादार रहेंगे। हमें याद दिलाया गया कि सच्चे दिल से प्रार्थना करने और बाइबल का गहराई से अध्ययन करने से हम यहोवा के करीब आ सकते हैं। प्रार्थना और अध्ययन करने से हमें बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना करने की हिम्मत मिलेगी। जैसे जैसे महासंकट करीब आ रहा है, हमारे सामने शायद ऐसे और भी मुश्किल हालात उठें जिनमें यहोवा और उसके राज के लिए हमारी वफादारी परखी जाए। हो सकता है लोग बार बार हमारी खिल्ली उड़ाएं, और इसकी एक वजह शायद ये हो कि हम हर मामले में निष्पक्ष रहते हैं। हमें अभी से वफादार रहने का अपना इरादा मजबूत करना होगा, तभी हम महासंकट के दौरान वफादार रह पाएंगे। पैराग्राफ 14। सवाल का, धरती पर अगुवाई करने वाले भाइयों को लेकर क्या बदलाव होने वाला है? सवाल ख, उस वक्त यहोवा के वफादार रहना क्यों जरूरी होगा? महासंकट शुरू होने के कुछ समय बाद अगुवाई करने वाले भाइयों को लेकर एक बदलाव होगा। उस वक्त धरती पर बचे हुए सभी अभिषेक जनों को स्वर्ग में उठा लिया जाएगा ताकि वो हर्मगिदोन की लड़ाई में हिस्सा ले सकें। इसका मतलब है कि शासी निकाय के भाई अगुवाई करने के लिए धरती पर मौजूद नहीं होंगे, फिर भी बड़ी भीड़ में कोई गड़बड़ी नहीं मचेगी। वो इसलिए कि दूसरी भेड़ों में से काबिल भाइयों को अगुवाई करने के लिए चुना जाएगा। उस वक्त हम कैसे दिखाएंगे कि हम यहोवा के वफादार हैं? अगुवाई करने वाले भाइयों को सहयोग देकर और यहोवा से मिले निर्देश मानकर। ऐसा करने से ही हमारी जान बचेगी। पैराग्राफ 15। सवाल, हम अपने अंदर धीरज का गुण कैसे बढ़ा सकते हैं और इसका क्या नतीजा होगा? धीरज। सन 2017 के अधिवेशन का विषय था हार मत मानो। इस अधिवेशन में हमने सीखा कि हम कैसे बिना हार माने परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि धीरज का गुण बढ़ाना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारे हालात सुधरेंगे या नहीं, बल्कि इस बात पर करता है कि हम यहोवा पर कितना भरोसा करते हैं। हम यीशु का ये वादा कभी नहीं भूलना चाहते, जो अंत तक धीरज धरेगा वही उद्धार पाएगा। मत्ती 24:13। यीशु के इस बात से हम सीखते हैं कि चाहे हम पर कैसी भी मुश्किलें आएं, हमें यहोवा के वफादार रहना है। अगर आज हम हर आजमाइश का सामना धीरज से करें तो महासंकट के शुरू होने से पहले हम में मजबूत विश्वास होगा। पैराग्राफ 16। सवाल का, हम किस वजह से हिम्मत वाले बनते हैं? सवाल ख, हिम्मत बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? हिम्मत। सन 2018 के अधिवेशन का विषय था हिम्मत से काम लो। इस कार्यक्रम के जरिए हमें याद दिलाया गया कि हम अपनी काबिलियतों की वजह से हिम्मत वाले नहीं बनते। जिस तरह यहोवा पर निर्भर रहने से हम धीरज धर सकते हैं, उसी तरह यहोवा पर भरोसा रखने से ही हम हिम्मत वाले बन सकते हैं। हम ये भरोसा कैसे बढ़ा सकते हैं? हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़कर और इस बात पर मनन करके कि बीते समय में यहोवा ने अपने लोगों को किस तरह बचाया था। जब महासंकट के दौरान राष्ट्र हम पर हमला करेंगे तो हमें हिम्मत से काम लेना होगा और पहले से कहीं ज्यादा यहोवा पर भरोसा रखना होगा। अगर आज हम यहोवा पर निर्भर रहना सीखें तो आने वाले समय में हम गोग के हमले का हिम्मत से सामना कर पाएंगे। फुटनोट। सन 2019 के अधिवेशन का विषय है प्यार कभी नहीं मिटता। इस कार्यक्रम से हमारा यकीन बढ़ेगा कि यहोवा हमसे बहुत प्यार करता है और हम उसकी पनाह में हमेशा सुरक्षित रहेंगे। फुटनोट समाप्त। पैराग्राफ 13 से 16 से संबंधित तस्वीर के बारे में, यहोवा के वफादार सेवकों की एक बड़ी भीड़ महासंकट से जिंदा निकलकर आई है और सब बहुत खुश हैं। चित्र शीर्षक, महासंकट से बचने के लिए अभी से तैयारी कीजिए। अपने छुटकारे की आस लगाइए। पैराग्राफ 17। सवाल, हर्मगिदोन के युद्ध से हमें डरने की जरूरत क्यों नहीं है? पिछले लेख में हमने देखा था कि हम में से कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी आखिरी दिनों में काटी है। हमारे आगे ये भी मौका है कि हम महासंकट से बच निकलें और उसके बाद भी जीते रहें। हर्मगिदोन की लड़ाई में शैतान की व्यवस्था का पूरी तरह खात्मा किया जाएगा, लेकिन हमें इस युद्ध से डरने की जरूरत नहीं है। वो क्यों? क्योंकि यह यहोवा की लड़ाई होगी जो वो हमारी तरफ से लड़ेगा। यहोवा का हुक्म मिलते ही यीशु मसीह स्वर्गीय सेनाओं के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ेगा। इनमें स्वर्ग में जीवन पाने वाले अभिषिक्त जन और लाखों करोड़ों स्वर्गदूत शामिल होंगे। वो एकजुट होकर शैतान, उसके दुष्ट दूतों और धरती पर उसका साथ देने वालों से युद्ध करेंगे। पैराग्राफ 17 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक, बहुत जल्द यीशु अपनी स्वर्गीय सेनाओं के साथ हर्मगिदोन का युद्ध करने आएगा और परमेश्वर के दुश्मनों का खात्मा कर देगा। पैराग्राफ 18। सवाल क, यहोवा ने क्या वादा किया है? सवाल ख, प्रकाशित वाक्य 7:9-13-17 से आपको भविष्य के बारे में क्या भरोसा मिलता है? यहोवा ने हमसे ये वादा किया है, तुम्हारे खिलाफ उठने वाला कोई भी हथियार कामयाब नहीं होगा। यशाया 54:17। उसके वफादार सेवकों की एक बड़ी भीड़ आने वाले महासंकट से जिंदा निकलकर आएगी और यहोवा की सेवा करती रहेगी। प्रकाशित वाक्य 7:9 में लिखा है, इसके बाद देखो मैंने क्या देखा, सब राष्ट्रों और गोत्रों और जातियों और भाषाओं में से निकली एक बड़ी भीड़ जिसे कोई आदमी गिन नहीं सकता, राजगद्दी के सामने और उस मेमने के सामने सफेद चोगे पहने और हाथों में खजूर की डालियां लिए खड़ी हैं। आयत 13-17 में लिखा है, ये देखकर एक प्राचीन ने मुझसे कहा, ये जो सफेद चोगे पहने हुए हैं ये कौन है और कहां से आए हैं? तब मैंने फौरन उससे कहा, मेरे प्रभु तू ही जानता है कि ये कौन है। और उसने मुझसे कहा, ये वो हैं जो उस महासंकट से निकलकर आए हैं और इन्होंने अपने चोगे मेमने के खून में धोकर सफेद किए हैं, इसी वजह से ये परमेश्वर की राजगद्दी के सामने हैं और ये दिन रात उसके मंदिर में उसकी पवित्र सेवा करते हैं, और राजगद्दी पर बैठा परमेश्वर इन पर अपना तंबू तानेगा। ये फिर कभी भूखे प्यासे न रहेंगे और न इन पर सूरज की तपती धूप पड़ेगी न झुलसाती गर्मी, क्योंकि वो मेमना जो राजगद्दी के पास है इन्हें चरवाहे की तरह जीवन के पानी के सोतों तक ले जाएगा और परमेश्वर इनकी आंखों से हर आंसू पोंछ डालेगा। वाकई बाइबल से हमें कितना भरोसा मिलता है कि भविष्य में हमें बचाया जाएगा। हम जानते हैं कि यहोवा विश्वास योग्य लोगों की हिफाजत करता है। भजन 31:23। जो यहोवा से प्यार करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं उन्हें उस दिन का इंतजार है जब यहोवा अपने पवित्र नाम पर लगा कलंक मिटाएगा। पैराग्राफ 19। सवाल, हम किस आशा को पूरा होते देखेंगे? जरा उस वक्त की कल्पना कीजिए जब दुनिया पर से शैतान का असर मिट चुका होगा। ऐसे में अगर दूसरा तिमुथियुस 3:2-5 में नई दुनिया के लोगों के बारे में लिखा जाए तो किस तरह वर्णन किया जाएगा? शासी निकाय के सदस्य रह चुके भाई जॉर्ज गैंगस ने कहा था, सोचिए वह दुनिया कैसी होगी जब हर कोई यहोवा की उपासना करेगा। बहुत जल्द आपको ऐसी ही दुनिया में जीने का मौका मिलेगा। आप तब तक जिएंगे जब तक यहोवा जिएगा। हम सबको हमेशा की जिंदगी मिलेगी। कितनी बढ़िया आशा! जल्द ही हम सब ये आशा पूरी होते देखेंगे। कुछ और जानकारी, उस वक्त लोग कैसे होंगे? दूसरों से प्यार करने वाले, सच्चाई से प्यार करने वाले, खुद के बारे में डींगे ना मारने वाले, नम्र, परमेश्वर की महिमा करने वाले, माता पिता की आज्ञा मानने वाले, एहसान मानने वाले, वफादार, अपने परिवार से बहुत लगाव रखने वाले, हर बात पर राजी होने वाले, दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा बोलने वाले, संयम रखने वाले, कोमल, भलाई से प्यार करने वाले, भरोसेमंद, लिहाज करने वाले, मन के दीन, मौज मस्ती के बजाय परमेश्वर से प्यार करने वाले होंगे। वो भक्ति का दिखावा नहीं करेंगे बल्कि उसके मुताबिक जिएंगे। वापस लेख पर, आपने क्या सीखा है? महानगरी बेबीलोन के विनाश के बारे में, यहोवा की शुद्ध उपासना करते रहने के बारे में, वफादारी, धीरज और हिम्मत के गुण बढ़ाते रहने के बारे में। गीत 122, अटल रहें। लेख समाप्त।